دين جبارك الله. وہ کہتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فإن کرہتموهن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا الى الاخر سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. توبہ کی تعریف اور حقیقت تک میرے خیال میں ہم نے اس سے پچھلی والی کلاس میں کر لیا تھا. وہ اس کے بعد جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ والی آیات کی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. جی اچھا ذرا روکتے ہیں, دروازہ بند کرنا پڑے گا, بات کر رہے ہیں لوگ. ایک منٹ. اچھا تو کلاس شروع کرنے سے پہلے نا ایک آپ کو ذرا وارننگ دینی ہے, صحیح ہے؟ وہ کیا ہے کہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلاس ہے یہ عالم سالک تفسیر کلاس ہے, ٹھیک ہے؟ عالمات سالکہ تفسیر کلاس ہماری کل ہوتی ہے اتوار کے دن. تو اس کلاس میں نا خواتین کو ساتھ من بٹھایا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے بٹھایا ہوا ہے تو وہ سن رہی ہیں تو معذرت کے ساتھ, آپ کی کچھ برائیاں کرنی ہیں اس کلاس میں تو بہتر ہے کہ آپ نہ سنیں ورنہ اس عاجز سے بدگمان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو خواتین کو معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کلاس سے اگر آپ ایکسکیوز کروا لیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ مردوں کی کلاس ہے, یہ مردوں میں ہی رہے تو بہتر ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ سب نے سن لیا ہوگا اور مان بھی لیا ہوگا اس بات کو, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ. اچھا تو اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو اصل میں اس عاجز کا ارادہ یہ بن گیا تھا کہ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں نا, تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ترجمے کے وقت بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کی پشت پناہی فرمائی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں کی جا سکتی ہیں, لیکن دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس موضوع کے اوپر دور حاضر میں ایک تو ہمارے حضرت نے اس موضوع کے اوپر بہت تفصیل سے کام کیا ہے, ٹھیک ہے؟ میوٹ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمارے حضرت نے بہت تفصیل سے کام کیا ہے, اور ہمارے حضرت سے پہلے جو بزرگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت کھل کر کے بات کری اور کام کیا, کتابیں لکھی اور ان کے مخطوطات موجود ہیں, وہ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے؟ تو اس عاجز کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب موجود ہے, تو اس میں سے نا اس موضوع کے اوپر کچھ اقتباسات پڑھ کے سنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ کس بات پر؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ عورتوں کی برائی کی کلاس ہے, اس وجہ سے ان سے معلوم کروا لیا. اب آپ سننا شروع کریں, ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت فائدہ ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ آپ کا اپنا ذاتی فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کی فیملی کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے, آپ کے اللہ نے اولادیں دی ہیں تو اولادوں کا بھی بہت فائدہ ہے, اور بیگم صاحبہ کا تو فائدہ ہے ہی, سن تو نہیں رہی نا کہیں وہ, ٹھیک ہے؟ تو ان کا بھی ظاہر ہے, ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر جو باتیں لکھی ہیں تو ان میں سے ظاہر ہے تو پوری کتاب تفصیلی سارا تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, مردوں سے ریلیٹڈ باتیں ہیں زیادہ. یہ جو صورت اس عاجز نے اس کلاس میں شروع کروائی ہے نا, یعنی تفصیل کی کے لیے اسی صورت کو کیوں چوز کیا تھا, اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ہمارے خامسہ والے جو طلباء ہیں تو انہوں نے اس صورت کی تفصیل پڑھنی ہی ہے اپنے امتحان کے لیے, उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन असल वजह ये थी कि इसके अंदर औरतों के जो हकूक के बारे में बातें आती हैं, तो मर्दों के सामने उनको जरा खोल के बयान करना। तो अब मौका मिला है, पहले तो विरासत वगैरह की बातें थी जिसके अंदर सबके हकूक शामिल होते हैं, लेकिन अब जरा औरतों के हकूक के बारे में मौका मिला है बात करने का, तो अब जरा सुने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजमून जो बिल्कुल इब्तिदा में बांधा था वो शौहर बीवी से मुतालिक चंद अहादीस रखी थी। तो उनमें एक हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको औरतों के हक में अच्छे बर्ताव की नसीहत करता हूँ, तुम उसको कबूल करो, क्योंकि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। ठीक है, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की रिब से औरत को पैदा किया गया है, तो वो खाली अंग्रेजों की कहावत नहीं है बल्कि हदीस मुबारक से बात साबित है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा फरमाया अम्मा हव्वा को। तो औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सो अगर तुम उसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो उसको तोड़ दोगे, इसलिए कि जो रिब बोन होती है ना उसको आप सीधा नहीं कर सकते। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप उसको हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगी, सीधी तो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो तुम उसको तोड़ दोगे और इसका तोड़ना तलाक देना है। ठीक है, यानी तुम फिर उसको जुदाई कर दोगे, यानी तुम ना औरत की इस्लाह ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि तुम उसको सीधा कर दो, जैसा कि हम कोशिश करते हैं औरत को सीधा करने की, तो तुम सीधा नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तलाक दे बैठोगे और वो जुदा हो जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी जो है वो बगैर बीवी गुजरेगी, या फिर वो सब तफसीलात हम पिछली दवा पढ़ चुके हैं। तो वैसे तुम्हारी एक्चुअली नहीं, सूरह तलाक के अंदर तफसील में हमने ये बातें पढ़ी हैं कि क्या नुकसान होते हैं जल्दबाजी में और गुस्से में आकर के जब मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है ना, तो उसको दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के नुकसान होते हैं। तो फरमाया कि अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो उसको तोड़ दोगे और उसका तोड़ना तलाक देना है, और अगर उसको उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी, इसलिए उनके हक में अच्छे बर्ताव की नसीहत कबूल कर लो। ठीक है, यानी मुझसे जो है ना वो ये बात मान लो, सुन लो मेरी बात। ठीक है, इसी हदीस को दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी तर्जुमा किया जाता है कि औरतों के साथ अच्छे सुलूक की ताकीद करता हूं, उसे मान लो। ठीक है, यानी कहते हैं ना भाई मेरी बात मान लो, खुदा के बंदे मान लो, तुम्हारे हक में बेहतर है। और फिर आगे वही तफसील है कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो उसको तोड़ बैठोगे और अगर उसको छोड़ दोगे तो टेढ़ा ही रहेगा, बस औरतों के बारे में भलाई की ताकीद कबूल करो। यानी उसको छोड़ोगे नहीं, क्या मतलब छोड़ोगे नहीं भाई, जहन में सवाल पैदा होता है कि उसको सीधा करने की कोशिश करने से तो मना कर दिया ना, तो अब कह रहे हैं कि छोड़ोगी नहीं, तो अब क्या करें भाई, ना सीधा करने की इजाजत है और ना छोड़ने की इजाजत है, तो अगर आप में से कोई इसका जवाब दे तो फिर करें क्या। ठीक है, रिब बोन की बात कर रहा हूँ, उसको औरत की बात नहीं कर रहा, रिब बोन को फिर आप क्या करें, अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, तो मना कर दिया। ठीक है, तो अब सालिकीन हजरात और उलमा हजरात से सवाल है कि फिर क्या करना चाहिए, नबी अलैहि सलाम क्या करने को कह रहे हैं। जी लिव विद इट नहीं ना, लिव विद इट का नहीं, नहीं हुस्न इखलाक तो फरमा रहे हैं कि हुस्न इखलाक। ठीक है, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना कि जी उसको छोड़ दोगे, साथ लेके चलना है, सॉफ्ट तरीका। अब आप लोग सब जो है ना वो बीवियों के बारे में शुरू हो गए, मैं आपसे जब भी बोल चुका हूँ कि मैं बीवी के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिब बोन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पसली की जो हड्डी होती है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्ट तरीका पेश आना चाहिए। देखें, जो मेरा सवाल है ना उस सवाल का जवाब जो है वो कुरान की आयत में है, जो कि हम जिसकी तफसीर पढ़ रहे हैं उसी आयत के अंदर इसका जवाब मौजूद है। ठीक है, वो क्या जवाब है कि फइन करहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहु शैअ। ठीक है, कि अगर वो तुम्हें अच्छी ना लगे तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें बुरी लग रही हो। वयजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर तुम्हारी ये बड़ी खैर बनाई हुई हो। ठीक है, तो अब इस आयत से कुछ जवाब समझ में आया, टेढ़े तरीके से ही निमटना चाहिए। हाँ, जो सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए। उसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओ, अच्छाई को देखना चाहिए। अब आप थोड़ा 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 लाइन पर आए, देखो साहब बराबर में तो नहीं बैठी हुई कहीं, वो तो नहीं लाइन चला रही आपको जी, ठीक है, यानी इस हालत से फायदा उठाए, नहीं सीधी सी बात करें ना, देयर इज बेनिफिट इन इट्स शेप। अच्छा भाई, जो जो आपके सामने एक कर्व्ड चीज है, ठीक है ना, आपके सामने भी हड्डी तो नहीं होगी कोई, जाहिर है हड्डी लेके तो नहीं बैठता कोई क्लास के अंदर, लेकिन कोई आप कर्व चीज को उठा लें अपने हाथ में, कोई भी चीज आपके सामने पड़ी हुई हो टेढ़ी सी है, उसको उठा लें, तो उसको देखने का अंदाज एक तो ये है ना कि उसके कर्व को आप हॉरिजॉन्टल रखें अपने सामने, तो आपको वो कर्व नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कर्व नजर आएगा ना, राइट। अगर आप उस कर्व को थोड़ा सा घुमाएं, है थोड़ा सा घुमाएं, या उसको ना घुमाएं, अपने आप को थोड़ा सा घुमा लें, राइट, अब आप उसको व्यू इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप उसको एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दें, तो वही कर्व जो है आपको स्ट्रेट नजर आना शुरू हो जाएगा, आएगा कि नहीं नजर आएगा, राइट, डिफरेंट एंगल से, चेंज योर एंगल, राइट, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट हर, चेंज योर एक्सपेक्टेशंस, है ना, अपनी तवक्कुआत उनसे चेंज करो भाई, ये तुम्हारी बीवी है, ठीक है ना, ये तुम्हारी कोई बांदी नहीं है, ये तुम्हारी खादमा नहीं है, ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है कि मैंने इस मशीन को जैसा प्रोग्राम किया था इट बेटर एक्ट लाइक दैट, है ना, जो मेरी प्रोग्रामिंग की थी ना तो उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक उसको काम करना चाहिए, अगर मशीन जो है वो प्रोग्रामिंग के खिलाफ करना शुरू हो जाए तो हमारे कंप्यूटर साइंस के उस्ताद साहब होते थे फास्ट आईसीएस जो लोग जानते हैं वहां के डायरेक्टर थे, तो वो फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारा कंप्यूटर जो है ना वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कुछ करना शुरू हो जाए, जैसे तुमने उसको प्रोग्राम किया है, राइट, उसके खिलाफ कुछ करना शुरू हो जाए ना, तुम उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो, तुम उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि वो मैल फंक्शन करना शुरू हो गया है, मैल फंक्शन करना शुरू हो गया है, राइट, खराब हो गया है वो, अब उसको अपने पास मत रखो, है ना, डस्टबिन में फेंक दो। यही सलूक जैसा कि कंप्यूटर के साथ करना चाहिए, और वो बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, पीएचडी किया हुआ था उन्होंने अमेरिका जाकर कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, फिर वो हमें सबसे मुश्किल कोर्सेज पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस के, लीनियर अलजेब्रा और न जाने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इस किस्म के, दोनों ने सुना होगा इन चीजों के बारे में, वो जानते हैं कि कितनी मुश्किल चीजें होती हैं। तो जिस तरह से हम रोबोट या कंप्यूटर के साथ ट्रीट करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हम बीवी के साथ भी वही तवक्कुआत रखते हैं कि जो मेरी तवक्कुआत हैं या जो मेरी माँ की तवक्कुआत है या जो मेरे बाप की तवक्कुआत है, ये उस उन तवक्कुआत के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए, और अगर पूरी नहीं उतर रही है तो मैं उसको सीधा करूंगा, ठीक है, और सीधी तो ये होगी नहीं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधी तो इसमें होना नहीं है, ठीक है, तो इसको उठा करके फिर डस्टबिन में फेंक देना है, ठीक है ना, जैसे कि कंप्यूटर के साथ करना चाहिए, उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, तो बीवी को भी उठा करके फिर डस्टबिन की नजर कर देते हैं, या तो इतना बुरा सलूक करते हैं उसके साथ, ठीक है, या फिर ये कि तलाक ही दे बैठते हैं उसको, है ना, तो देखने के अंदाज को बदल दो, वही टेढ़ी चीज तुम्हें ठीक सीधी नजर आनी शुरू हो जाएगी, राइट, अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं ना कि जिस चीज में तुम्हें कराहियत नजर आ रही है तो इस तरह से सोचो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसके अंदर खैर कसीर रखी है, अपनी सोच को बदलो, अल्लाह ताला की तरफ से सोचना शुरू करो कि अल्लाह ताला ने इसको जो बनाया है मेरी निकाह के अंदर दिया है, तो अगरचे कि मुझे ये बेहतर नहीं लग रही है लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी, है ना, यही सोचने को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ना यहाँ पर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात हमें 1400 साल पहले समझा दी थी, काश कि हमारी बात समझ में आ जाती। अच्छा, अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस हदीस की एक्सप्लेनेशन में फायदा लिखते हैं कि सीधा करने का ये मतलब है कि इनसे कोई भी बात तुम्हारी तबीयत के खिलाफ ना हो, यानी ये है इसको सीधा करना, जैसा कि कंप्यूटर को सीधा करो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई काम ना करे, तुम्हें इस कोशिश में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं इस कोशिश में तुम्हें कामयाबी नहीं होगी, ठीक है, और अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो अंजाम कार तलाक की नौबत आएगी, इसलिए मामूली बातों में दरगुजर करना चाहिए, नीज ज्यादा सख्ती करने या बेपरवाही करने से कभी औरत के दिल में शैतान दीन के खिलाफ बातें पैदा कर देता है। ये मौलाना साहब, ये सूफी साहब, ये साहब जो हैं बड़े दीनदार बनते हैं, तबलीगी भाई है ना, اور ختم نبوت کا کام کرنے والے یا فلانے ایک سے ایک جو ماشاء اللہ دینی محنتوں کے اندر یہ کوئی ختم نبوت صاحب کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن ساری دینی محنتیں، تو اگر اس دینی محنتوں کو کرنے والے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف اپنے گھر میں رہتے ہیں، عاشروہن بالمعروف کے حکم کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، رائٹ؟ اور شیطان پھر اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس قسم کے لیے کیا فائدہ ہے دینی کاموں کا، ہے نا، تمہارے یعنی دینی کاموں کا کوئی، تمہارے ساتھ تو بہت ہی برا رویہ کیا ہوا ہے اس نے، ہے نا، تو پھر وہ بیوی کو جو ہے وہ دین کے خلاف اکسائے گا اور پھر اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا اگر وہ دین کے خلاف ہو گئی، ہے نا، تو اور پھر اس یہی ہوتا ہے کہ وہ شیخ سے بیعت بھی کی بھی ہوتی ہے لیکن شیخ صاحب کی ماننی مانے تو کچھ ہوتی نہیں ہے، لیکن بیوی کے اوپر جو ہے نا وہ روب جمایا ہوا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ دنیا کے سب سے بڑے پیر صاحب سے بیعت ہوا ہوں، ہے نا، تو بیوی بھی کہتی ہے تمہارا پیر بھی ایسے ہی ہے جیسے تم ہو، ہے نا، تم جیسے ہو نا تمہارا پیر بھی ویسے ہی ہوگا، یہ بیوی کے دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے، تو اب کسی اللہ کے ولی کے بارے میں اگر بیوی کے دل میں یہ بات آ گئی تو پھر آپ کا کیا بنے گا، آپ اپنے گھر میں کس کو لیے پھر رہے ہیں پھر، اور آپ کی اولاد کی ماں جو ہے وہ کون بن رہی ہے پھر، ایمان والی بن رہی ہے پھر، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایمان نکال لیا ہے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار بنے نا، پھر یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑا مسئلہ ہے جنت اور جہنم والا مسئلہ۔ اچھا تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی نقل کری ام مکتوم، اچھا ہاں وہ جو حدیث ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ، سب کو پتا ہوگی یہ حدیث، تو ہم نے عرض کیا کہ وہ نابینا نہیں ہے، نہ ہم کو دیکھتا ہے نہ ہم کو پہچانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے، رائٹ؟ تو اگرچہ کہ پتہ ہے ساری بات کہ عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر غایت احتیاط والی بات امت کو سکھلا دی، تو اس کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، فقی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، رائٹ، تو کیا لکھتے ہیں کہ یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کو نامحرم سے ایسا گہرا پردہ کروائے کہ نہ یہ اس کو دیکھے نہ اس کو دیکھے، ٹھیک ہے، یعنی پردہ کروائے اپنی بیوی سے، اس میں بیوی کے دین کی بھی حفاظت ہے کہ بے پردگی کی خرابیوں سے بچی رہے گی اور اس کی دنیا کی بھی حفاظت ہے، اس لیے کہ تجربہ ہے کہ کسی چیز سے جس قدر خصوصیت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پردے میں یہ خصوصیت ظاہر ہے اس لیے بیوی سے تعلق بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر بیوی ایسی ہوگی نا کہ ہر ایک سے بات کر رہی ہوگی، غیر محرموں سے بات کر رہی ہوگی، کزن سے بات کر رہی ہوگی، رائٹ، تو شوہر کا دل جو ہے نا وہ اس کے اندر ویسا تعلق بیوی کا ہرگز نہیں بن سکتا جیسا کہ پردے دار بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے مشائخ ہمارے حضرت جی دام وقاتوں اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے گھر کے اندر جب شوہر کا کے ساتھ جو ہے وہ عورت کے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا تو پہلی چیز کیا فرماتے ہیں، پردہ کرو، رائٹ، پردے والی زندگی گزارو، پردے والی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالی شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی تو گھر کے معاملات جو ہیں وہ خوشگوار ہو جائیں گے، محبت والے ہو جائیں گے، سکون والے ہو جائیں گے، تو بیوی کی جو بے پردگی ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے پورے خاندان پر پڑ رہا ہوتا ہے، گھر کے ماحول کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہے فرض، یہ ہے فرض، پردہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فرض جو ہے نا یہ شوہر نے کروانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں اتنی ساری بیوی کی سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ پردے کے معاملے میں بیوی کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ بیوی نہیں کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرو، رائٹ، اس کو جو ہے کرنے دو بے پردگی، ہرگز نہیں، اس معاملے کے اندر یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن، یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، اپنی زندگی خراب کرنا، بیوی کی زندگی خراب کرنا، بچوں کی زندگی خراب کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس معاملے میں جو ہے نا اپنے شیخ سے فوراً بات کریں کہ کیا کروں میں اس کا، ٹھیک ہے،
دوسرے معاملات کے اندر جو فرض نہیں ہوتے ہیں, جو مستحب کے درجے میں آتے ہیں یا جس کی کوئی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے, اس میں تو ہم نا بیوی کی گردن مڑونا شروع کر دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جو دین کا حق ہے, جو فرض ہے, اس میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی بیوی کی کیا کر رہی ہے وہ, ہے نا. تو جس چیز میں ہونی چاہیے اس میں کیوں نہیں ہے, اور جس میں نہیں ہونی چاہیے اس میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے, 100% شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس مسئلے کو جو ہے نا وہ اگنور کر کے زندگی گزارتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, آپ ابھی ڈنڈا لے کے اس کے اوپر کھڑے مت ہو جائیں, بے شک. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, پردہ کروانا خیر نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگنور مت کریں, اور مشائخ سے اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے نا, اس کا مشورہ کریں, پوچھیں اسے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو بیوی سے تعلق بھی نا اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا, اور اتنا ہی اس کا حق زیادہ ادا ہوگا. تو پردے میں بیوی کے دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوگا, یعنی بیوی کی اپنی زندگی بہتر ہو جائے گی اگر وہ پردے میں رہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ جو شوہر کے دل میں بیوی کی, ٹھیک ہے, جو محبت رکھی ہے نا, اس کی گہرائی جو ہوتی ہے نا, اس کا تعلق پردے کے ساتھ ہے. اچھا, اب جو ہے وہ بیویوں کی تھوڑی سی بات, یہ تو بظاہر آج کے دور کے اندر بیویوں کے خلاف جاتی ہے نعوذ باللہ, حالانکہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم, لیکن اس دجالی دور میں رہتے ہیں کہ اس میں بیویاں جو ہیں وہ اس کو اپنے خلاف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. بہرحال اب تو ہم بیوی کے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. اگلی بات کہ شادی کے بعد علیحدہ مکان میں رہنے کی ضرورت. فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو بیوی کو لے کر والدین کے ساتھ شامل رہنا, یعنی ساتھ میں رہنا, ہرگز مناسب نہیں ہے. اگر ممکن ہو کا مطلب اگر تمہارے پاس فائنینشیل کیپیسٹی ہے الگ رکھنے کی, ٹھیک ہے, تو اس فائنینشیل کیپیسٹی کو جا کر کے پھر نا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ مت کر دینا. اس ایکسٹرا پیسے سے تم پلاٹ لے کر کے مت ڈال دینا. اس ایکسٹرا پیسے سے جو ہے وہ تم امریکہ اور یورپ کا جو ہے وہ چکر لگانے کی بجائے بیوی کے لیے الگ گھر لے کر کے دینا. یہ مطلب ہے اس کا, بیوی کے لیے الگ رہنا, اس کا انتظام کرنا. ٹھیک ہے, تو امی ابو کے ساتھ رہنا جو ہے نا, یہ امی ابو کا حق نہیں ہوتا کہ بیوی کو امی ابو کے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے نا, اور یہ بیوی کے بھی حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس کے مفاسد بہت ہیں. یہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی, آج کے 21ویں دور کے امریکی عالم کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ میں تو پھر معاملات بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. آج کل تو شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں کہ اگر شادی سے پہلے نا وہ یا تو اگریمنٹ باقاعدہ سائن کرواتے ہیں یا حلف اٹھواتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ تو نہیں جانا پڑے گا ہماری بیٹی کو, ہے نا. اور اگر کوئی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا, نہیں جاؤ بھائی, ہماری بیٹی تمہارے لیے اویلیبل نہیں. ٹھیک ہے, تو میں امریکی عالم کی 21ویں صدی والے امریکن عالم کی بات نہیں کر رہا, حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے نا, پکے ہندوستانی, یو پی کے دیوبند کے تھانہ بھون کے رہنے والے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو بیوی کو لے کر والدین کے ساتھ شامل رہنا, یعنی ساتھ میں رہنا, ہرگز مناسب نہیں ہے. اس کے مفاسد بہت ہیں, بعد میں خبر ہوتی, آخر میں خبر ہوتی. ٹھیک ہے نا, بعد میں لگ پتہ جاتا ہے کہ امی ابو کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ خانگی گھریلو فسادات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں. کیا فرما رہے ہیں, ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں, کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہوتا ہے. عورتوں کا, بیویوں کا نہیں, عورتیں, چاہے وہ یعنی ڈفرینٹ جنریشن کی عورتیں کیوں نہ ہو, وہ اگر ساتھ رہیں گی نا فساد. ٹھیک ہے, بس یہ سسٹم ہے, حجرات والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے, ہر بیوی کا الگ حجرا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, والدین, اب یہ ذرا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ذرا سخت الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب نے واعظ میں فرمایا تھا, یعنی کسی نے سوال کیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ ایک روز جناب نے واعظ میں فرمایا تھا کہ بیوی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ خاوند کے والدین سے علیحدہ رہنا چاہے تو اس کا منشا پورا کر دینا واجب ہے, لیکن کلام مجید میں حکم ہے کہ شرک کے سوا تمام امور میں والدین کا حکم مانو. تو یہ حکم ماننا تو فرض ہوا کہ بیوی کو ہمارے ساتھ رکھو, ہے نا, کسی نے سوال کیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب دریافت طلب امر یہ ہے, یعنی جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کی اگر مرضی نہیں ہے کہ ان سے علیحدہ رہے خواہ ایک ہی مکان میں, تو کس طرح کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے, پہلے فرض ادا کیا جائے یا واجب ادا کیا جائے.
ठीक है, यानी बीवी का वाजिब अदा किया जाए या वालिदैन का फर्ज अदा किया जाए। इन साहब को, सवाल पूछने वाले साहब को फर्ज और वाजिब का फर्क यहाँ पे पता जाहिर नहीं था। तो हज़रत हामिद रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब में लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालिदैन की अताअत तर्क के वाजिब में नहीं है और औरत के ये हुकूक वाजिब है। ठीक है, यानी वालिदैन की अताअत जो है ना वो भी वाजिब है, लेकिन किसी दूसरे वाजिब को तर्क करके वालिदैन की अताअत नहीं की जा सकती है। ठीक है, बस अगर वालिदैन उनके तर्क को कहें तो उनकी अताअत नहीं, यानी अगर वालिदैन कहें कि तुम फलाने वाजिब को तर्क कर दो तो उनकी अताअत नहीं की जाएगी। ला ताअता लि मख़लूक़, अच्छा आगे खुद ही लिख रहे हैं क्योंकि हदीस में है कि ला ताअता लि मख़लूक़िन फी मा'सियतिल ख़ालिक़, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की अताअत नहीं की जाएगी। और बीवी को अलहदा मकान देना उसके मुतालबे के वक्त वाजिब है और वाजिब का तर्क करना मासियत है, लिहाजा अगर वालिदैन इस मासियत का हुक्म दें तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सुन लिया? ठीक है, अब ये जो है ना कि बीच में जो एक लफ्ज आया ना कि बीवी के मुतालबे के वक्त अगर बीवी मुतालबा करे कि मुझे अकेला रहना है, तो अमेरिका में तो मुतालबा करती हैं, इंडिया में तो मुतालबा नहीं करती, और पाकिस्तान में बीच बीच का मामला है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान पड़ता है ना पाकिस्तान, तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जो है वो दोनों कल्चर्स हैं, इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर दोनों। ठीक है, तो वो जरा बैन है पाकिस्तान का मामला काफी सूरतों में, तो इसके बारे में क्या फरमाते हैं ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो एक और टॉपिक में इन्होंने लिखा कि हाँ, बीवी को सास ससुर के साथ रखने या अलहदा रखने का तफसीली शरी हुक्म, बीवी का नफका वाजिब है, नफ्ते का एक जुज बीवी को रहने के लिए घर देना है, यानी बीवी के ऊपर जो नफका वाजिब होता है ना उस नफ्ते में शामिल है कि बीवी को रहने के लिए घर देना। इसके मुतालिक एक आम गलती में अक्सर लोग मुब्तला हैं, वो ये कि बीवी को जुदागाना घर देना अपने जिम्मे वाजिब नहीं समझते हैं, बस अपने अजीजों रिश्तेदारों में औरत को लाड डालते हैं। ठीक है ना, यानी लिटरली जिस तरह घर में फेंक के चला जाता है ना बंदा, उस तरीके से वो शादी करके लेकर आते हैं और फिर हवाले करके अपने दोस्तों में, है ना। तो हजरत ने यही लिखा है कि बस अपने अजीजों रिश्तेदारों में औरतों को लाड डालते हैं। सो इसमें हुक्म ये है कि अगर शामिल रहने पर यानी सबके साथ रहने पर औरत बखुशी राजी हो तब तो खैर है, वरना अगर वो सबसे जुदा रहना चाहे तो मर्द पर उसका इंतजाम करना वाजिब है। और यहां भी राजी होने के यही मतलब मानी है, यानी राजी होने के मतलब क्या है, क्या मतलब राजी होना, जी जी सरताज आप तो जो कहेंगे मैं वही करूंगी, ठीक है, नहीं, बल्कि राजी होने के मानी यही है कि तीब खातिर यानी दिल से राजी। ये तीब खातिर जो है ना, तीब नफ्स, ये हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं सूरह निसा की तारीफ के अंदर ही कि तीब नफ्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो मानी है यानी इसके यही मानी है कि तीब खातिर से राजी हो, हत्ता कि अगर मर्द को पुख्ता कराइन से यानी दीगर चीजें जो है ना वो उसको बता रही हो कि वो अलहदा रहना चाहती है मगर जुबान से दरख्वास्त ना कर सके, तब भी मर्द को शामिल रखना जायज नहीं है। ठीक है, यानी वो जुबान से ना कह रही हो लेकिन दीगर तराइन से पता चल रहा है कि जी उसकी जिंदगी जो है ना वो मुसीबत बनी हुई है माँ बाप के साथ रहने की वजह से, ठीक है ना, तो फिर भी जायज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या लिख रहे हैं आप कि अगर इस तरह सब बच्चे अलग हो जाएं तो वालिदैन की खिदमत कैसे होगी उनके बुढ़ापे में। तो ये कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात नहीं पता थी है? और थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ऊपर जो है वो जितने हमारे बुजुर्ग हैं जिनके ये मुक़ल्लिद हैं, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम को ये बात नहीं पता थी, सहाबा को ये बात नहीं पता थी कि वालिदैन की खिदमत भी करनी होती है। वही अल्लाह ताला है ना जिन्होंने के बीवी के हुकूक बनाए, उन्होंने वालिदैन के हुकूक बनाए और वालिदैन के कैसे कैसे हुकूक बनाए। ठीक है, तो करना ये होता है कि बीवी को अलग रखना होता है लेकिन वालिदैन की खिदमत बेटे ने करनी होती है।
ठीक है ना, ये बेटे ने अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, जिस तरह से भी वो करे उसने ये खिदमत करनी, ठीक है। अब इसका इसके अंदर जो है ना वो देखें, फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात तो हुई ना शुरू में, फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी इतनी होगी कि वो बीवी को भी अलग रखे और वालदेन को भी इस तरीके से रख सके कि वो उसकी खिदमत कर सके, चाहे उसको ट्रैवल करके जाना पड़े या उसको जो है वालदेन के लिए जो है वो खादिम रखने हो, ठीक है, या वालदेन का जो है वो घर जो है वो अपने घर के साथ रखे, ठीक है, तो कोई ना कोई सूरत बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन वालदेन की खिदमत के नाम पर बीवी का हक जो है ना वो माना नहीं जा सकता, ठीक है। तो वालदेन की खिदमत करनी है और ये भी करना है, तो कवामूना अलन निसा का जो टाइटल लिए लिए तमगा समझा सजा के हम फिरते हैं, तो इस तमगे के ऊपर तो कुछ करना भी तो पड़ता है ना, राइट, इतना आसानी से तो ये तमगा नहीं मिल जाता ना। तो इसी वजह से ना ये सारी जो चीजें ना ये मर्द के ऊपर है, ये बीवी ये औरत के ऊपर ये सारी तफसीलात है ही नहीं, ठीक है ना। उसको तो कवामूना अलन रिजाल बनाया नहीं ना अल्लाह ताला ने, तो जिसको बनाया है तो फिर वो इसको का हक भी तो अदा करेगा ना, तो अब वो करे, ठीक है ना, वो अपने मशाइख से मशवरा करे, अपनी अकल को इस्तेमाल करे, वो जो है वो अहले मशवरा दूसरे लोगों से इसके बारे में डिस्कस करे, वो और इस पर कोई तदबीर निकाले, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए इस रास्ते को खोल दिया, ठीक है ना। अब उसके अंदर घोड़े दौड़ाए इस रास्ते के अंदर और किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल करे, ठीक है। अगर एक ही बिल्डिंग हो लेकिन फ्लोर्स अलग अलग हैं, पेरेंट्स अलग फ्लोर पर हों और बेटे की फैमिली अलग फ्लोर पर हो, तो ऐसी सूरत में रख सकते क्या? हाँ, तो उसको तो अलग, जिसको अपार्टमेंट कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, तो उसका अलग घर हो गया ना ये, ठीक है। यहाँ पर तो बात हो रही है कि एक ही, जिसको कहते हैं ना एक ही ड्राइंग रूम है, एक ही किचन है, राइट, और उसके अंदर जो है वो सारे के सारे हैं, इस तरह से उसको मना किया जा रहा है, इसको नहीं मना किया जा रहा कि सऊदी अरब में भी यही कल्चर है कि शादी के वक्त लड़का माँ बाप से अलग हो जाता है। हमारे यहाँ यमन बरादरी के अंदर भी यही कल्चर है, ठीक है ना, कि वो यानी फ्लैट अलग लेकर के देते हैं। अक्सर लोग, पता नहीं आप लोगों को ज्यादा तफसील पता होगी जो है यमन, डज इट मीन डॉटर इन लॉ इज नॉट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन लॉज? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये ऐसे नहीं है ना। तो बाकी तफसीलात अलग चीज होती हैं, लेकिन ये जो हमने एक खामखा अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। चले आगे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने मजमून भी बांधा हुआ है, बीवी पर साथ की खिदमत करना फर्ज नहीं, ठीक है। आपके सवाल का जवाब अगले लाइन में ही मौजूद है। बाद आदमी उसको बड़ी सआदत समझते हैं कि बीवी को अपनी माँ का महकूम और मगलूब बना करके रखें, है ना, यानी माँ जो है वो गालिब हो और बीवी मगलूब हो, और इसकी बदौलत बीवियों पर बड़े बड़े जुल्म होते हैं। सो खूब समझ लेना चाहिए कि बीवी पर फर्ज नहीं कि सास की खिदमत क्या करे, तुम सआदतमंद हो तो खिदमत करो। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड कर रहा। हज़रत लिखते हैं कि बीवी पर फर्ज नहीं कि सास की खिदमत क्या करे, तुम सआदतमंद हो तो खिदमत करो, खिदमत के लिए नौकर लाओ, ठीक है। अभी तो आपको बगैर पढ़े जवाब दे दिया था, लेकिन अब जो है पढ़ के जवाब दे रहा हूँ। मेरी राय तो यह है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह क्या लिख रहे हैं, मेरी राय तो यह है कि औरतों के जिम्मे, यानी कज़ान जिसको कहते हैं ना, कि लीगली खाना पकाना वाजिब नहीं है, यानी अब क्या करेंगे सारे के सारे, बीवी के जिम्मे खाना पकाना वाजिब नहीं है कज़ान, ठीक है ना, लीगली स्पीकिंग इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इस आयत से इस्तेदलाल किया है, यानी थानवी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं कि मैंने इस आयत से दलील पकड़ी है इस बात की, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ठीक है, कि अल्लाह ताला की आयात यह है कि उसने तुम्हारे अपने नफूस में से तुम्हारे लिए अजवाज बनाई हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, ये इस आयत का तर्जुमा बनता है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हासिल ये कि औरतें इस वास्ते बनाई गई हैं कि इनसे तुम्हारे कल्ब को सुकून हो, करार हो। तो औरतें तो भाई जी बहलाने के वास्ते हैं, ना कि रोटियां पकाने के वास्ते। अल्लाह के वलियों का क्या बनेगा, अल्लाह की विलायत वालों का अब क्या बनेगा, जो कि रोटियों के बगैर जो है ना वो बीवी का रोटियां, कुछ जगहों पर रोटियां नहीं चावल है ना, वो चावल के बगैर उनका खाना नहीं होता, कहीं पर रोटियों के बगैर खाना नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है।
अच्छा,
बीवी को अलहदा मकान देने का मतलब और उसकी आसान सूरत, इतनी गुंजाइश है कि अगर पूरा घर जुदा ना दे सके तो बड़े घर में से एक कोठरी, कोठरी का मतलब कमरा, ठीक है, कोठरी या कमरा ऐसा दे देना कि उसकी जरूरियात को काफी हो सके और वो उसमें अपना मालो असबाब मुकफल ताला लगाकर रख सके, ठीक है। क्या मतलब कि किसी और को इजाजत नहीं होगी कि वो उसके कमरे में आकर के उसकी चीजों से खेले, ठीक है ना, या उसकी चीजों उठा करके ले जाए, बल्कि ताले में रखने की उसको इजाजत होनी चाहिए और आजादी के साथ अपने मियां के साथ तन्हाई में बैठ उठ सके उस कमरे के अंदर, बातचीत कर सके, ये वाजिब के अदा करने के लिए काफी होगा, ठीक है ना। यानी इसकी शर्त क्या है कि अगर गुंजाइश इतनी ही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, गुंजाइश ज्यादा होती है और वो जो गुंजाइश होती है उसको खराबात में लगा देते हैं, गैर जरूरी और गैर फर्ज कामों के अंदर लगा देते हैं, ठीक है ना, और फिर कहते हैं जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से लेकर क्या हूं घर, है ना। तो भाई ये अल्लाह ताला ही के सामने हिसाब देना है, अल्लाह ताला को पता है कि आपने जो आपके पास गुंजाइश थी उस गुंजाइश को किधर आपने खर्च किया, ठीक है, और फिर जो है वो इधर आकर के नखरे कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है, तो वो इंसानों के साथ तो मामला है ही नहीं, ये सारा कुछ अल्लाह के साथ मामला है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, चूल्हा तो जरूरी अलहदा होना चाहिए, चूल्हा यानी किचन, राइट, जरूरी अलहदा होना चाहिए, ज्यादातर आग इस चूल्हे ही से भड़कती है। हमारे अजय जी भी ये फरमाते हैं कि आग तो किचन से ही लगती है, ठीक है ना, और सारा मसला ही शुरू जो है वो किचन से होता है जब एक ही किचन के अंदर सबको रखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, लड़के और बीवी को अलग ना रहने देना जुल्म है, ये माँ बाप को बोल रहे हैं कि एक जुल्म बीवी पर और भी होता है जिसमें दीनदारी के मुद्दई यानी दीनदारी का धर्म दम भरने वाले बकसरत मुब्तला हैं, वो ये कि बीवी अगर अलग रहना चाहे तो अलग नहीं करते, कहते हैं कि घर की हवा निकल जाएगी। पुरानी बूढ़ियों के ज्यादातर ऐसे ही ख्यालात होते हैं, यानी अब ये बड़ों को बोल रहे हैं कि बड़े बूढ़े जो है ना वो कहते हैं घर की हवा निकल जाएगी और मोहब्बत खत्म हो जाएगी और अलग अलग हो जाएंगे, तो उनके ऐसे ख्यालात होते हैं। याद रखो कि हक तआला की मासियत में किसी की अताअत नहीं, और बीवी अगर अलग रहना चाहे तो अलग रहना उसका हक है और जरूरी है, बल्कि जमाने में इसी में मसलहत है कि अलग रहें। शामिल रहने में बहुत से फसादात हैं, तो अब हो क्या रहे, हो यही रहा है कि हर घर में फसाद, हर घर में झगड़ा, पाकिस्तान के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, ठीक है ना। और वो ये ज्यादातर केस में, सब हर केस में नहीं, बिकॉज कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां पर कि बिल्कुल अलग रह रहे होते हैं लेकिन वहां पे फसाद की दूसरी वजूहत बन रही होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ना यही वजह बनती है कि साहब जो है वो सबको ला करके डाल दिया होता है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज्यादातर फसाद जो है वो यानी अलग रहें यानी शामिल रहने में बहुत से फसादात हैं। ये पुरानी औरतें अक्सर बहुओं को बहुत सताती हैं, और अजीब बात है कि अगर बेटा बीवी की तरफ मुतवज्जो होता है तो इससे भी जलती हैं, और अगर मुतवज्जो ना हो तो नमक पढ़वाती फिरती हैं, यानी फिर वजीफे पढ़वाती हैं कि जी बेटा जो है वो बीवी की तरफ मुतवज्जो क्यों नहीं है, तावीज कराती हैं। तो अलग रहने में इन सब बखेड़ों से निजात है, ठीक है। और अगर ये कहो कि आजकल भौवें नालायक हैं, सासों से लड़ती हैं, उनको दिल और परेशान करती हैं, तो मैं कहता हूं कि इसका मुक्तदा भी यही है कि उनको अलग कर दो, गर्ज अलहदा रहने में तरफेन यानी सास बहू को राहत है, ठीक है। यानी हजरत अपना पॉइंट पेश कर रहे हैं कि भाई अलग रहना ना उसमें फायदा है, तो अगर बहू है भी खराब, वाकई वो बहू है, हमारे वो सैफुल्ला साहब हजरत जी के बेटे के ना बहू, तो अगर वो वाकई बहू है तो फिर भी तो सास का ही फायदा है कि उसको अलग रखो, ठीक है। तो ये तो चंद बातें थी, अब इसको थोड़ा सा आगे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चंद और बातें भी पढ़नी है, जो कि अब ये तो साथ रहने वाला मसला था ना, अब जो है वो अलग रहने वाले सिचुएशन में जबकि मियां बीवी ही खाली रहते हो तो फिर भी तो मसले तो होते हैं ना। अच्छा, क्या आपने लिखी है चंद बातें वो भी देख लेते हैं कि अगर बीवी मना करे या वो माँ बाप से मिलने को पसंद ना करे, खिदमत ना करने दे, तो बीवी को अगर आपने खुदा बनाया हुआ है तो फिर आपका मसला है, तो जब अब माँ बाप को जब ये बोल रहे हैं कि ला ताता ने मखलूक फी मासियत अल खालिक, यानी अगर माँ बाप की बात नहीं माननी है अल्लाह ताला की नाफरमानी की सूरत में, तो बीवी की बात कैसे माननी होगी, कि बीवी मना करती है माँ बाप के पास ना जाओ, राइट, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, कोर्स नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो माँ बाप की खिदमत वो अलग एक जिम्मेदारी है और बीवी के हुकूक अलग जिम्मेदारी है, उन दोनों को अलग अलग लेकर के चलना है। जबकि तो कवामून बनाया ना, कोई बात फिर हमारी अम्मी के चचा ने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल यही काम किया हुआ है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, एक ही बिल्डिंग में हर फ्लोर पर एक बेटे को जगह दी है, ठीक है। अल्लाह ने उनको अक्ल सलीम अता फरमाई और साथ साथ जो है वो माली तौर पर उनको ऐसा बनाया भी कि वो ऐसा कर सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जब सब साथ रहते हैं तो क्या उनको चाहिए कि अलग हो जाए? जी, अलग हो जाए, ठीक है ना। वो इसकी फिक्र करना शुरू हो जाए आज से कि अलग अलग फिक्र तो करना शुरू करें ना, कोशिश तो करना शुरू करें ना, इस तरफ सोचना तो शुरू करें। कल आपका बयान, कल आपने बयान सुना होगा, ठीक है, अमाल की इस्लाह करते हैं, सोच की इस्लाह नहीं करते, है ना। तो ये सोच की इस्लाह है कि इस चीज को गलत समझना शुरू करें और फिक्र करना शुरू करें कि अच्छा इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है ना। अमाल तो बाद में ठीक होंगे ना, पहले सोच की इस्लाह पहले करनी होती है। तो ये उन सोच की इस्लाह के अंदर ना ये चीज भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और टॉपिक है बीवी के हुकूक का बयान, ठीक है। अब मर्द के हुकूक तो वैसे भी मर्दों को अच्छे खासे पता होते हैं, और ये बीवी वाली क्लास है नहीं, ये मर्दों वाली क्लास है, तो इस वजह से आप लोगों को बीवी के हुकूक ही सुनने पड़ेंगे। घर वाला हक तो आपने सुन लिया। अच्छा, अब फरमाते हैं कि यही आयत जो हमने सूरह निसा की ये पढ़ी थी, वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ फइन करहतुमुहुन्ना, तो उसमें लिखते हैं कि मर्दों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने किस उम्दा पैराए में औरतों की सिफारिश की है, ठीक है ना। तो तर्जुमा इस आयत का क्या है कि फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर किसी वजह से तुमको वो नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुमको कोई चीज नापसंद हो और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सी भलाइयां रख दी हो। तो अब इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जाहिर है नापसंद होना किसी वजह से ही होगा भाई, वो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो कोई वजह है ना, ठीक है, वो खूबसूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या आज क्या वो बदसूरत हो गई है? क्या शादी से पहले वो खूबसूरत थी अब बदसूरत हो गई है? भाई शादी के बाद जो है वो खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या किसी के चेहरे के ऊपर किसी ने कुछ नाउज बिल्ला तेजाब वगैरह फेंक दिया हो तब तो वो बदसूरत हो सकती है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज तो जो चेहरे वाली जो 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 फीचर्स होते हैं वो फीचर्स तो ज्यादा नहीं बदलते ना, ज्यादा से ज्यादा तो थोड़ा सा वो गोश्त ज्यादा आ जाता है जब वजन बढ़ता है उनका, ठीक है। कुछ औरतों का वजन जो है वो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बढ़ जाता है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल शक्ल वैसी रहती है जैसे कि शादी से पहले थी। तो भाई जब तुम पहले पसंद करके लेकर आए हो, ठीक है, तो फिर अब तुम्हें जो है वो थोड़ी सी तब्दीली अगर हो गई है तो क्या इतनी मुसीबत पड़ गई है, ठीक है ना। तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है करने को, तुम्हारी प्रायोरिटीज बस यही है कि बस बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। है जिन लोगों के पास करने का कोई काम नहीं होता ना, वो हर वक्त जो है वो बीवी के ही पीछे पड़े रहते हैं, है ना। इसका हल जो है ना वो ये नहीं है कि बीवी बदल करके ले आओ, जो कि मुसीबत पड़ी हुई है बहुत सारे नौजवानों को। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, दूसरी शादी की सूझनी शुरू हो जाती है उनको, है? और लिटरली लोग जो है वो अपनी जिंदगियां इसी सोच के साथ गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं भी जानता हूं कि इसी सोच के साथ गुजार रहे हैं कि कोई मौका मिलेगा मैं दूसरी करूं, और कुछ तो कर भी चुके हैं, कुछ तो कर भी जाते हैं, ठीक है। तो असल में वजह उसकी ये होती है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं, जरा साहब के पास चार बीवियां होती थी, बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा बीवियां होती थी, ठीक है। अब दौर जो है ना ये वो वाला दौर नहीं है, ये दज्जाल का दौर पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। इस दौर के अंदर जो ये मुसीबत पड़ जाती है ना लोगों को, दूसरी बीवी अपनी बीवी बुरी लग रही है और दूसरी के चक्कर में वक्त लगे हुए हैं ना, तो उसकी जो मेन वजह बनती है वो ये होती है कि फारिग होते हैं, ठीक है ना। कोई उनके साथ उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं उठाई हुई होती हैं, उन्होंने जो है वो अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनाया हुआ होता है, कोई फोकस नहीं बनाया हुआ होता है, बस वही जो है ना वो जाहिरी हुस्न के दीवाने, जाहिरी हुस्न के दीवाने, ठीक है। और इस दीवानगी के अंदर जो है ना फिर वो अपनी भी जिंदगी खराब करने के चक्कर में रहते हैं और बीवी की और बच्चों की जिंदगी भी खराब करने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो असल में ना जाहिरी हुस्न की दीवानगीपन जो है ना वो इस दौर के अंदर वजह बन रही है ये हरी हरी सूझने की, ठीक है। तो भाई इस जाहिरी हुस्न के पीछे देखने की कोशिश कर लें थोड़ा सा, और जरा समझने की कोशिश कर लें कि हम किस जमाने में जिंदा रह रहे हैं, राइट, क्या इस जमाने के चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो जो है ना कि बात कहां से शुरू हुई थी कि भाई किसी वजह से वो बीवी बुरी लग रही है, तो अगर खूबसूरती का मसला है तो पहले क्यों नहीं देख करके लाए, पहले जो है वो अम्मा ने जो पसंद कर लिया बस उसके ऊपर जो है वो हाँ कर दी, तो भाई उस वक्त नहीं हाँ करनी चाहिए ना इस मामले के अंदर, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो उस वक्त ना कर देते, क्या ख्याल है आपका? ये जो अल्लाह के वली होते हैं उनको माओ के हुकूक का पता नहीं होता क्या? हम अल्लाह के बड़े बड़े औलिया को जानते हैं कि जिन्होंने अम्मी को मना कर दिया है, अम्मी को मना कर दिया, अम्मी मैं यहां शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये माँ के जो के अहकामात की है ना, कि माँ का हुक्म, माँ का हक वगैरह, ये उनको हमसे ज्यादा पता है इस बात का, ठीक है। लेकिन तमीज के साथ और अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी वालदा को मना कर दिया, अम्मी मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये पता है कौन लोग थे, ये वली जो थे ना, ये किताबें पढ़ के वली नहीं बने थे, ये वो लोग थे कि जिनका ताल्लुक जो है वो अपने मशाइख के साथ बहुत मजबूत होता था। वो अगर इस किस्म की कोई काम करते थे ना, तो एक तो बेहतरीन इखलाक के साथ करते थे, पीछे उनके मशाइख की बैकिंग भी होती थी उनको, तो उनकी बैकिंग के साथ फिर अपने वालिदैन को इस किस्म की किसी गलती से मना किया करते थे, ठीक है। तो हमें भी अगर यानी अपनी जिंदगी को जो है ना, वो जरा पहले से, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाएं और हमारे हाथ से बाहर निकल जाएं, उनको अगर लाइन पे रखना है ना, तो हमें भी जो है ना इस किस्म की मजबूत निस्बत को बनाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि पीछे से सपोर्ट भी रहे। अम्मी साहिबा का जो आगे से पर वो आएगा ना, जो उनका रिटेलिएशन आएगी, तो उस रिटेलिएशन को सहने के लिए फिर कुछ सपोर्ट भी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कि जी माँ बाप का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, माँ बाप की तरह, भाई ये किताबी बातें पढ़ पढ़ के ना हमने जो है वो बहुत ही बेड़ा कर किया हुआ है अपना, ठीक है। ये इस दीन को जो है ना, ये बुजुर्गों की नजर से, बुजुर्गों के तजुर्बे से, बुजुर्गों की बसीरत के रास्ते से समझने की जरूरत है, किताबों के औराब से समझ में नहीं आता है। ये दीन, ये दीन कभी भी किताबी दीन नहीं था, ये सोहबती दीन है, सोहबती दीन। कितनी दफा हमारे मशायख की बात हमें समझा चुके हैं, और हम उनको किताबों के जरिए से इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, दीन के ऊपर कर ही नहीं सकते, समझ में ही नहीं आती बात है असल में किताबों के जरिए से। तो सोहबत होती है ना, तो फिर ये सारे मसले जो हैं वो आसान हो जाते हैं या खड़े ही नहीं होते फिर ये मसले, ठीक है। तो फरमाया कि जाहिर है कि नापसंद होना किसी वजह से ही वो कर दिया ना, बिल्कुल इस वक्त बाहर निकाल दिया खूबसूरती वाली वजह, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी, तो आपका मसला है कि अगर वो खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं असल, आगे क्या लिखते हैं कि ज्यादातर औरतों के नापसंद होने की वजह ये होती है कि उनके इखलाक अच्छे नहीं होते, है ना। ये बात जरा समझ में आती है, क्योंकि जब शादी करके लेकर आते हैं तो इखलाक के बारे में कोशिश तो करते हैं कि जी अच्छे इखलाक वाली लेकर के आए, लेकिन इखलाक एक ऐसी चीज है जो कि चेहरे पर लिखी भी नहीं होती है कि इसके इखलाक बड़े अच्छे हैं, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, वैसे तो लोग इतनी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं कि इखलाक के बारे में जरा फिक्र करें, उनको तो खाली खूबसूरती की पड़ी हुई होती है, भूत परी लानी होती है, या डॉक्टर लेकर के आनी होती है, या जो है वो कोई कमाने वाली लेकर के आनी होती है, ठीक है। तो इखलाक इखलाक की तो मजाक वैसे ही हम लोग नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पड़ी हुई भी हो इखलाक, तो वो भी जो है वो कितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी से पूछेगा तो वो जानने वाला ही होगा ना उस लड़की का, तो जानने वालों ने तो उसके हक में ही बात करनी है, ताकि बच्ची की शादी हो जाए किसी तरीके से, बेशक बाद में जाकर कोई जो भी करे वहां पर, लेकिन शादी हो जाए किसी तरीके से इसकी, तो इखलाक का नहीं पता चलता, ठीक है ना। उमूमी तौर पर इखलाक छुपे रहते हैं और शादी के बाद उनके ऊपर से पर्दा उठता है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर जो सिफारिश करी है ना, ये बद इखलाकी बद इखलाक औरतों ही की सिफारिश करी, यही हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये औरतों के नापसंद होने की वजह ये होती है कि उनके इखलाक अच्छे नहीं होते, और ये बात मर्द के लिए भाई से अजियत होती है, जाहिर सी बात है उसको तकलीफ होगी कि जब बीवी उसके साथ जो है वो इस किस्म का मामला कर रही है। मगर अल्लाह ताला का गोया वादा है कि औरतों की बद इखलाकी वगैरह को भी खैर कसीर का सबब बना दे। देखिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की क्या जबरदस्त अल्फाज, गोया के वगैरह को भी खैर कसीर का सबब बना देंगे। अल्लाह ताला हकीम है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मसलन उससे औलाद ही हो जाएगी जो कयामत में इस शख्स की दस्तगीरी करेगी, है ना भाई। यानी औरत तो है ना, बच्चा पैदा करने की उसके अंदर सलाहियत है ना, तो अब वो जैसी बद इखलाक है लेकिन आपके लिए औलाद हो जाएगी, तो औलाद जो है फिर शफात का सबब बन जाएगी इंशाल्लाह। आप मेहनत करने अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, ठीक है ना। और ये जो बद इखलाक औरत है, इस औरत के इखलाक भी संवर सकते हैं, ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि औरत के इखलाक नहीं संवर सकते, ठीक है, बेहतर हो सकते हैं। तो फरमाते हैं कि जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, देख लीजिए इस बात में किस कदर साफ और वाज़े हैं और इनसे किस कदर औरतों के हुकूक साबित होते हैं। अब औरतों के हुकूक का खुलासा लिखते हैं कि शौहर पर बीवी के ये हुकूक हैं, तो इनको जरा गौर से सुन लीजिए क्योंकि पॉइंट वाइज हजरत ने 13 पॉइंट्स लिखे। नंबर 1, हुस्ने खुल्क, यानी अच्छे इखलाक से पेश आना और उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया हुस्ने खुल्क। नंबर 2, ईजा का, यानी बीवी की तरफ से जो तकलीफ पहुंचे उसका बर्दाश्त करना, लेकिन एतदाल के साथ, यानी उसकी लिमिट्स हैं कितनी तकलीफ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि तनाव का अल्लाह ताला ने रास्ता खोल के रखा हुआ है, लेकिन उस एक्सट्रीम को वो पहुंच रही है कि नहीं, तो ये भी समझने के लिए जरा अकल समझ चाहिए और इसके लिए भी जरा मशवरे वगैरह की जरूरत पड़ती है कि क्या तलाक की नौबत आ गई है कि नहीं आ गई। लेकिन जब तक वो नौबत ना आए उस वक्त तक जो है बर्दाश्त करना उसकी ईजा, ये हक नंबर 2 है, ठीक है, उसकी ईजा को बर्दाश्त करना। नंबर 3, गैरत में एतदाल करना, यानी ना तो उससे बदगुमानी करे और ना बिल्कुल गाफिल रहे, ठीक है, यानी पर्दा तो फर्ज है, पर्दे का तो एहतमाम करवाना है, ठीक है, लेकिन जब पर्दे का एहतमाम कर रही है तो अब जो है वो उससे बदगुमानी जो है ना, वो नहीं कि भाई वो पता नहीं बात कर रही होगी किसी से, ठीक है, या जो है वो किसी महरम रिश्तेदार से भी बात कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है, यानी इस तरह से बदगुमानी ना करे, इसमें भी इतदाल को कायम रखना है, ठीक है। तो गैरत में जो है ना वो एक्सट्रीम्स में ना चला जाए, एकदम बेगैरत ना हो जाए, ठीक है, और इतना ज्यादा आगे ना बढ़ जाए कि बदगुमानी शुरू कर जाए बीवी से, ये तीसरा हक हो गया। चौथा हक, खर्च में एतदाल करना, यानी ना तंगी करे और ना फजूल खर्ची की इजाजत दे, ठीक है, यानी अपने घर वालों पर खर्च करे, ठीक है ना, जैसे कि हदीसें इस किताब में भी मौजूद हैं और दूसरी जगहों पर भी, कि सबसे बेहतर जो अल्लाह ताला को सदका पसंद है ना, वो अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना है और उनमें बीवी आती है, बीवी और बच्चे, ठीक है, तो खर्च में तंगी ना करे, एतदाल से करे, फजूल खर्ची, अब ये भी जाहिर है डिटरमिन करने के लिए जरा अकल समझ चाहिए होती है, और जब तक अकल समझ इनफ ना हो तो बड़ों से उस वक्त तक सीखनी होती है सब तक। तो ये चौथा हक हो गया कि खर्च में एतदाल करे। पांचवा, हैज वगैरह के अहकाम सीख कर उसको सिखलाना और नमाज और दीन की ताकीद रखना और बिदात व मनहियात यानी नाजायज कामों से उसको मना करना, ठीक है, यानी दीन सिखलाना, अपनी बीवी की दीन तरबियत करना का मतलब ये नहीं कि उसको डंडा लेकर के सीधा करना या पसली को जो है वो सीधा करने की कोशिश करना इस तरीके से नहीं, बल्कि दीन को सिखाने की जो असबाब आप मुहैया कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लासेस ज्वाइन करवा लेना या क्लासेस के बारे में बताना या जो है अगर मदरसे जा करके जो है वो कोई तालीम वगैरह में शामिल होना है तो जाने आने का जो है वो इंतजाम करना कि पर्दे के साथ जा आ सके, राइट, तो ये सब भी जो है ना ये शौहर की जिम्मेदारियां हैं, ओके, तो अहकाम, अच्छा, या अगर ये सब कुछ ना हो तो खुद सीख करके फिर आगे कुछ सिखाते रहना, ठीक है। छठा, अगर कई औरतें हों यानी कई बीवियां हों तो हुकूक में उनकी बराबरी का, ठीक है, मोहब्बत में बराबरी की बात नहीं हो रही, हुकूक यानी जो आप जितना दे रहे हैं, ना नफका दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो बराबर दें अपनी बीवियों के दरमियान। ये जो है ना ये जो मल्टीपल शादियों के शौकीन जो नौजवान होते हैं ना, तो ये चीज तो उनको बिल्कुल ही इसकी तो परवाह नहीं होती है, ना उनको अंदाजा होता है कि ये करेंगे कैसे वो, ठीक है। अच्छा, सातवा, बकद्र हाजत उससे वती यानी सोहबत करना, बकद्र हाजत यानी अब इनको जितनी हाजत है उतना यानी सोहबत करना, अब इसके अंदर भी जो है ना वो यानी तफसील है कि भाई उसकी सेहत का भी ख्याल करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, ठीक है, और कुछ हजरात जो है वो इसके अंदर बिल्कुल ही उनको कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर अपने मशायख से पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी निगाहों को और अपनी सोचों को बिल्कुल बेलगाम छोड़ देते हैं इंटरनेट के ऊपर जो है ना वो छुप छुप करके या बेशर्मी के साथ जो है वो इंटरनेट के ऊपर चीजें देख रहे होते हैं और टीवी के ऊपर जो है वो खबरें सुनने के बहाने जो है वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देख रहे होते हैं ना, तो उसके बाद फिर हर वक्त ही हाजत रहती है उसके बाद, है ना, कभी भी हाजत से वो फारिग नहीं हो सकता ऐसा बंदा, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है ना, तो उसके लिए जो है वो अपने मशायख से जो है फिर बात करनी पड़ती है कि भाई आई एम लाइक एन एनिमल बीस्ट बना हुआ हूँ मैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं कि मैं मेरी ये चीज जरा कंट्रोल में आए, ठीक है। तो अब बकदर हाजत का मतलब ये नहीं है कि जी बस उसके अलावा और कोई काम ही नहीं, और अनफॉर्चुनेटली यानी बड़े लोग जो है ना इस मुसीबत में मुब्तला है, बड़े लोग, ठीक है ना, बहुत लोग नहीं, बड़े लोग इस मुसीबत में मुब्तला है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना है, लेकिन बीवी के साथ सोहबत करना ये बीवी का हक बनता है, ठीक है। यानी कुछ लोग जैसे कि इस ये भी तबका पाया जाता है कि जो कि सारी सारी रात जो है वो दोस्तों के साथ गुजारते हैं, सड़कों पे गुजारते हैं, या नाउज बिल्ला किसी हराम जगह पर गुजारते हैं और बीवी के साथ सोहबत नहीं करते हैं, ठीक है, बीवी का यह हक अदा नहीं करते हैं, ये पॉइंट जो है ना वो उनके लिए है कि उनके साथ सोहबत करना, बिस्तर पे वक्त गुजारना, उम्मीद है कि औरतें नहीं सुन रही हैं, इसी वजह से शुरू में आपको बता दिया, यानी दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, नवा पॉइंट, उसकी इजाजत के बगैर, यानी बीवी की इजाजत के बगैर अजल ना करना, अजल का पता है सबको, ठीक है, कि सोहबत करने में बाहर इंजाल ना करना, ठीक है, क्या मतलब ही बाहर इंजाल ना करना, कि बाहर इंजाल करने का मतलब क्या होता है, ये बर्थ कंट्रोल का तरीका होता है, ठीक है, कि बीवी के अंदर जो है वो सीमन दाखिल नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे होगा, ठीक है, तो ये बीवी के हुकूक में से है कि बीवी को औलाद चाहिए होती है, ठीक है ना, अच्छी जो बीवियां होती हैं पुराने जमाने की, आजकल भी होती हैं, तकरीबन सारी बच्चे की ख्वाहिशमंद तो होती है ना, सवाए बिल्कुल ही जिनका दिमाग खराब हो, ठीक है, तो वैसी बीवी लेकर के क्यों आते हैं जिसका ऐसा दिमाग हो, बहरहाल तो बच्चा जो है ना ये बीवी की का हक होता है, तो इंजाल कर यानी अजल कर लेना तो फिर उससे बच्चा कैसे होगा, तो ये बीवी का हक है, अगर वो इजाजत दे तो फिर आप कर सकते हैं ये काम, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो अजल जो है वो बीवी की इजाजत से करना, ये हक नंबर 8 हो। हक नंबर 9, बकदरे किफायत रहने के लिए घर देना, इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है। पॉइंट नंबर 10, उसके महारिम अकारिब यानी उसके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, चचा, फूफी, बहन भाई वगैरह से जिमा वगैरह जाहिर ना करने, ठीक है, यानी उसके महारिम अकारिब का मतलब ये नहीं कि अपने महारिम अकारिब से जो है वो बीवी के साथ कैसा वक्त गुजरा और कितना क्या क्या नहीं किया ये सब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, नहीं, बल्कि यानी ये चीज जो है ना वो उसके लिए जो है वो शर्मिंदगी और बेहयाई का सबब बनेगी, तो इस किस्म की बातों के भी बेडरूम में आप बीवी के साथ क्या मामला चल रहा है ये किसी के सामने इसका डिस्कस इसका जिक्र नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं करनी है बात, ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 10 हो गया, या ये कि एक्चुअली पॉइंट नंबर 10 जो है वो महारिम अकारिब से कुछ और लिखना था जो कि शायद किसी वजह से डिलीट हो गया है। पॉइंट नंबर 11 ये है कि जमा वगैरह की बातें जो है वो जाहिर न करना, यानी किसी पर भी जाहिर न करना, तो मेरे ख्याल में ये दो अलग अलग पॉइंट भी हो सकते हैं। बहरहाल पॉइंट नंबर 12, हद से ज्यादा ना मारना, क्या मतलब भाई, कि जब वो नौबत आ जाए जिसमें शरीयत ने मारने की इजाजत दी है तो उसमें जो है ना हद में रहना, ठीक है, जैसे चेहरे पे मारने को मना किया है और उसको यानी बहुत ही जलील और रुस्वा करके मारना, गालम गलोच करने से भी मना किया है, हदीस मुबारका मौजूद है, बुरा भला कहने से मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बिल्कुल वो जो ऐसी नौबत आ जाती है जिसके अंदर के शरीयत ने इजाजत दी है तो उसमें जो है वो बहुत ही यानी, और वो आज के दौर में फिर आपको पता है कि क्या होगा उसके बाद, बहरहाल अभी तो फिर वही मामला हुआ है ना कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हमारे लिए जरूरी है, फर्ज वाजिब है, तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ तो फिर सारे हुकूक तो आपके पास नहीं रहेंगे ना, बहरहाल। तो 13वां पॉइंट है, बगैर जरूरत के तलाक ना देना, ठीक है, यानी जरूरत जो है वो जो होती है उन्हीं उसी सूरत में तलाक देना, जैसे कि सूरह तलाक की तफसीर में बात चल रही है आजकल कि हमने सुना है अक्सर ना कि दीन इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया है ना, ये बात तो सभी ने सुनी होगी, दीन इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया है और ऑटोमेटिकली फिर जिना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निकाह जब इतना आसान है तो जिना की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, और जहां पर निकाह मुश्किल होता है वहां पर जिना आसान हो जाता है, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन सूरह तलाक की तफसीर के अंदर एक और बात क्या सामने आती है, طلاق کے مسائل جب پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ, تو کیا بات کہ دین اسلام نے طلاق کو مشکل بنایا ہے, بہت مشکل بنایا طلاق. ٹھیک ہے, کیا طریقہ ہے دین کے اندر جو جائز طلاق ہے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ طہر میں طلاق دینا ہے, اور وہ بھی وہ طہر کہ جس کے اندر بیوی سے صحبت نہ کی. اب ذرا کیلکولیشن کر کے دکھائیں نا کہ جی بیوی جب غصہ آ رہا ہو, بیوی اچھی نہ لگ رہی ہو ہے, تو پھر جو ہے وہ حساب لگائیں کہ جی اچھا حیض ہوا, ختم ہوا, پھر طہر رہی, اور طہر کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی طہر ہو کہ جس کے اندر کہ بیوی کے ساتھ صحبت نہ کری ہو, تو پھر جو ہے وہ ایک طلاق لینا, طلاق سے رجی جس کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری عدت گزرنے دینا, یہ ہے جائز طریقہ طلاق دینے کا. ٹھیک ہے, اور باقی طریقے ناجائز ہیں. ناجائز کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ بلکہ آیا ہے تین طلاقیں ایک ساتھ دیتا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر یعنی ٹھکائی ہوتی ہے پھر, تو بھائی ٹھکائی کے بغیر جو جائز طریقہ ہے, وہ جائز طریقہ جو ہے نا وہ آسان طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل بنایا ہے جائز طریقے سے طلاق دینا. ٹھیک ہے, تو بغیر ضرورت کے طلاق نہ دینا, اور دینا بھی اگر تو جائز طریقے سے دینا. تو یہ جو ہے 13 حقوق ہیں بیوی کے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہاں لسٹ ڈاؤن کیے ہیں. باقی اس کی تفصیلات اور بھی مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں. چند ایک باتیں بس کوئکلی نوٹ کری تھی. کسی کو کوئی اور سوال ہے؟ اگر بہت ساری باتیں شوہر بیوی کے تعلق میں کہ جس میں ہم یا تو ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا, یا ہم بالکل ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ خام خا کے جھگڑے جو ہے نا وہ ہماری زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمیں کرنا چاہیے, دین کا کام کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, نیکیاں کرنی ہیں, ہم ان سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے, افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. نفقہ کے واجب ہونے کے اوپر آگے کچھ مضامین تھے. بیوی کا نفقہ واجب ہونے کی صرف اتنی شرط ہے کہ بیوی کی طرف سے تسلیم نفس, یعنی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دینے میں بلا عذر کوتاہی نہ ہو, اور اگر عذر سے ایسا ہو, مثلا مہر معجل جلدی والا مقرر شدہ مہر لینے کے لیے اپنے نفس کو تسلیم نہ کرے, تو اس میں نفقہ واجب رہے گا. یعنی بیوی اگر یہ کہے شوہر سے کہ بھائی آپ نے تو مجھے جو مہر معجل تھا وہ آپ نے مجھے دیا ہی نہیں, تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو ایسے میں شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا پھر میں تمہارا نفقہ بھی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یعنی تمہارے کھانے پینے کا انتظام اور نفقے کے اندر گھر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, بیوی کو علیحدہ مکان دینا بھی نفقے میں داخل ہے, یہ بھی آگے موضوع حضرت نے بنایا ہوا ہے. تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں آپ کو نفقہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, البتہ اگر سرکشی کی وجہ سے شوہر کے گھر سے چلی گئی, اس صورت میں جب تک وہ واپس نہ آ جائے نفقہ واجب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اگر خود ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے تو پھر اب کون سے گھر کا مطالبہ کر رہی ہے؟ بعض عورتوں کی جانب سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ شوہر سے مخاطب کر کے اپنے مہکے جا بیٹھتی ہیں اور نفقے کا مطالبہ کرتی ہیں, تو اس صورت میں نفقہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو بس ہم انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں, آپ سے ایکسٹرا 10 منٹ ویسے بھی لے لیے. آخری بات جو کہ ان سب باتوں کے اوپر بھاری ہے, وہ یہی بنتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیوی کے اوپر جو ہے نا ایک شوہر کو رکھا ہے نا, ٹھیک ہے, جو کہ یعنی شوہر کے حقوق جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ پہلے ہی جو ہے وہ اتنے ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, تو اور حقوق جو ہیں وہ یاد آتا آ جاتے ہیں, تو پھر اور بھی زیادہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے شوہر کے حقوق تو نہیں پڑے, لیکن اندازہ تو آپ کو ہے نا, سب کو اندازہ ہے کہ شوہر کے کتنے زیادہ حقوق ہوتے ہیں بیوی کے اوپر. اور بڑی جو حدیثیں ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں اس کے اندر کہ بیوی کو یہ بھی کرنا چاہیے, بیوی کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, ایسا ایسا بہت سارے کچھ. لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے, ٹھیک ہے نا, جس سے جو ہے نا وہ مسئلے حل ہوں گے, مسئلے خراب نہیں, کیونکہ اپنے حقوق معلوم ہونے سے جو ہے نا پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. جب اپنا حق پتہ چل جاتا ہے پھر وہ بندہ کیا ہوتا ہے, حق پرست بن جاتا ہے, ایم کیو ایم والا ہے نا, تو پھر تو وہ گولیاں چلتی ہیں اور لاشیں اٹھتی ہیں. پھر اس کے بعد تو گھر کے اندر بھی پھر گولیاں چلتی ہیں, زبانی گولیاں چلتی ہیں, ہاتھ پیر کی گولیاں چلتی ہیں گھر کے اندر, اور پھر اس کے بعد بچوں کے لاشیں اٹھتے ہیں اس کے بعد گھر کے اندر, ہے نا. بچوں کے لاشیں اٹھتے ہیں, روحانی لاشیں اٹھتے ہیں, نفسیاتی لاشیں اٹھتے ہیں پھر گھر کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اپنے حقوق جو پتہ لگ جاتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات جس سے کہ مسئلہ حل ہوگا نا, وہ یہ ہے کہ بھائی بیوی کے اوپر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے اوپر والے سے نہ تو آپ کا کوئی تعلق ہو, نہ تو آپ اس کی کوئی بات مانتے ہو, نہ تو آپ اس کی کوئی عزت کرتے ہو, نہ تو آپ کی زندگی میں اس کا کوئی رول ہو, لیکن آپ کی توقع کریں کہ آپ کے جو نیچے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کریں, آپ کے سارے حقوق ادا کریں, آپ کی ہر بات مان کر کے چلیں, آپ کی جو ہے وہ اف نہ کریں آپ کے ڈیمانڈ کے اوپر, ہے نا, کہ جی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آواز دیں بیوی کو تو اگرچہ کہ وہ چولہے پہ بیٹھی ہو تو اس کو آ جانا چاہیے, ہے نا, اور اگر نہیں آئے گی تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے, ہے نا. تو یہ جو فری کا جو حق آپ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھائی آپ کا کسی کے اوپر حق, یعنی آپ کے اوپر کسی کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ڈرامے بازی نہیں چلتی. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے, اگر اس کا اپنے یعنی اس کو اتنا زیادہ پابند آپ نے بنا کر کے ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ وہ ایک آواز پہ آپ کے پاس آ جانی چاہیے, یاد رکھیں کہ آپ کا بھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ آپ کو بھی اس کی ایک آواز پہ لبیک کہنا ہے نا, آپ کو بھی اس کی ایک آواز پر لبیک کہنا ہے. کوئی کہہ کے دکھائے, ابھی کہہ کے دکھائیں گے, کوئی ہے ایسا آپ کی زندگی میں کہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ رائٹ, نہیں ہے ہماری زندگی میں. حقیقت تو یہ ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کی بات نہیں مانتے, ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن بیوی سے کیا ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ساری باتیں مانتے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کا دین جو ہے نا یہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس قسم کے دین کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایسا ہم نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے یا تو بیوی کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور پھر تیار ہو جائیں اس کی جو کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے, اوبیسلی اس کی آپ کو اجازت تو نہیں دی جا رہی, آپ کو انکریج تو نہیں کیا جا رہا کہ بیوی کو چھوڑ دیں, جو مرضی آئے وہ کرے, کیونکہ اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائی بنایا ہے بیوی کا, فوکلکم رائن مسئول ان مسلو, کیا ہے وہ حدیث انوار کا, کلکم رائن وکلکم مسئول. ٹھیک ہے, پتہ ہی ہے ہر رائی سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. تو بیوی کو چھوڑ دینے کا بھی آپشن نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے آپشن کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد رکھنا اور بیوی کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر کے رکھنا, اس کی بھی اجازت. تو یہ جو ہے نا ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سننے کی بھی اور پھر اپنے دل میں اتار کر کے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں خود. ٹھیک ہے, اگر نہیں گزار رہا تو پھر مجھے بہتر ہے کہ گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم آج کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.